शिवी और उसके दोस्तों को इंडियाना रेस्टोरेंट की तरफ से पार्टी का नोटिफिकेशन मिला। वो लोग रेस्टोरेंट के लोगों की मदद करने के इरादे से तय समय से पहले ही रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही शिवी को रेस्टोरेंट के आगे लगा आर्य सिंह ओबेरॉय का बोर्ड दिखा, उसे ये समझने देर नहीं लगी कि आर्य ने वो रेस्टोरेंट खरीद लिया है। अपने दोस्तों के साथ बहस होने और पार्टी अटेंड ना करने का सोचकर शिवी रेस्टोरेंट से कैब लेने के लिए जाने लगी। ईशान और जिया उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे आए। जिया ने उसके पास आकर कहा, ये क्या बचपना है शिवी, तुम अच्छे से जानती हो हम कभी आर्य सिंह ओबेरॉय से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, फिर क्यों बेवजह की जिद पर अड़ी हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे कम्पीट करना चाहती हूँ? मुझे तो उस इंसान की शक्ल तक नहीं देखनी है, शिवी ने गुस्से में जवाब दिया। हम तुम्हें पार्टी अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं शिवी, जिया के बाद ईशान शिवी को समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं बस इतना चाहता हूँ हम चलकर एक बार मिस्टर सिंह से बात करें, वो बार बार अपनी बात से बदल नहीं सकते। पहले उन्होंने एक ही बार में आर्या को रेस्टोरेंट बेचने के लिए हामी भर दी, उसके बाद तुम्हारे कहने पर डील कैंसिल कर दी। अब हम वापस यहाँ आए हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये रेस्टोरेंट आर्या ने खरीद लिया। कम से कम हमें इसके पीछे का कारण जानने का पूरा हक है। अब तो मैं इसका कारण जानने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये जगह आर्य सिंह ओबेरॉय की है और मैं यहाँ पर कदम भी नहीं रखूंगी, शिवी ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। उसकी बात सुनकर जिया हंसने लगी। जिया की इस तरह हंसने पर ईशान और शिवी उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। उनकी सवालिया नजरों का जवाब देते हुए जिया ने कहा, क्या कहा तुमने, कम्पीट सिंह ओबेरॉय की जगह पर कदम भी नहीं रखोगी? लेट्स मेक इट क्लियर वन थिंग मिस शिवी, तुम जिस जगह पर अपनी एमबीए की डिग्री कंप्लीट करके बड़े बड़े सपने देख रही हो वो यूनिवर्सिटी भी उसी आर्या सिंह ओबेरॉय की है। तो क्या हुआ, मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, पहले मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं थी इसलिए मैं वहां चली जाती थी, तुम अच्छे से जानती हो परसों सेरेमनी के बाद हम वहां वापस कभी नहीं जाएंगे, शिवी ने पूरे एटीट्यूड से जवाब दिया। मैंने कहा ना, जहां आर्या सिंह ओबेरॉय होगा वहां ये शिवी कभी नहीं जाएगी, शिवी ने अपना फैसला सुना दिया। वो वहां खड़ी होकर उनसे बातें कर रही थी तभी एक कैब पास से गुजरी। शिवी ने उसे रुकने का इशारा किया। कैब रुकने के बाद उसने ईशान और जिया की तरफ देखकर कहा, अगर तुम दोनों में से कोई मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकता है, बाकी इंडियाना में अब ये शिवी कभी कदम भी नहीं रखेगी। तुम चली जाओ, मैं अपनी गाड़ी में आ जाऊंगा, ईशान ने जवाब दिया। शिवी ने जिया की तरफ देखा, जिया ने भी उसके साथ आने से मना कर दिया। मुझे आर्या से मिलना है, तुम्हारी उससे लड़ाई हो गई तो मैं क्या करूं, मेरा तो हमेशा से उस पर क्रश था और मैं उससे मिलने का मौका गंवा नहीं सकती। बच के रहना, कहीं तुम्हारा क्रश तुम्हें क्रश ना कर दे, शिवी ने मुंह बनाकर कहा और कैब में बैठकर वहां से चली गई। शिवी के जाते ही ईशान ने जिया से कहा, कम से कम उसके सामने तो ये सब बातें मत करो, तुम्हें भी कोई दिक्कत है तो तुम यहां से जा सकते हो। जिया ने कंधे उचकाकर बेपरवाही से जवाब दिया और वहां से इंडियाना रेस्टोरेंट में जाने लगी। उन दोनों के अलग अलग जगह जाने के बाद ईशान चुपचाप वहां खड़ा था। उसने खुद से कहा, ये लड़कियां इतनी पागल क्यों होती हैं और मुझे ही ऐसे दोस्त मिलनी जरूरी थी क्या? एक जो आर्या सिंह ओबेरॉय की शक्ल तक नहीं देखना चाहती और एक उसे एक नजर देखने भर के लिए यहां रुक रही है। थैंक गॉड मेरे वाली ऐसी नहीं है, वो आर्या सिंह ओबेरॉय के इतने करीब होने के बावजूद उसके लिए पागल नहीं है, बोलते हुए अचानक ईशान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी गाड़ी लेकर कहीं जाने के लिए निकल गया। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। आर्या सिंह ओबेरॉय एक बड़ी से बिल्डिंग के आगे था जिसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में डिजायर्स लिखा हुआ था। ये आर्या की टेक्सटाइल कंपनी थी जो उसने खुद के दम पर खड़ी की थी। आगे बढ़ने के जुनून में उसने काफी कम समय में लंदन में खुद को एस्टैब्लिश कर लिया। उसकी कंपनी लंदन में इंडियन एथनिक ड्रेसेस बनाने के लिए फेमस थी। आर्या गाड़ी से बाहर निकला और ऑफिस में गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा सब जल्दी जल्दी काम करने लगे। ऑफिस में शांति थी और सारा काम काफी व्यवस्थित तरीके से हो रहा था। वहां काम करने वाले ज्यादातर लोग भारतीय ही थे। आर्या को आता देख उसकी असिस्टेंट जेनी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। गुड मॉर्निंग सर, उसने काफी सधे तरीके से कहा। मेरे केबिन में आओ, आर्या ने इतना ही कहा और तेज कदमों से अपने केबिन में जाने लगा। जेनी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसने अंदर आते ही कहा, मिस्टर ओबेरॉय का कॉल आया था, उन्हें एक इवनिंग गाउन चाहिए, वो आज शाम, जेनी बोल रही थी तभी आर्या ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे इन सब के बारे में पहले से पता है, तुमने उन्हें मना क्यों नहीं किया? तुम्हें अच्छे से पता है हमारे यहाँ सिर्फ एथनिक्स डिजाइन होते हैं। मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने कहा कि आप सब संभाल लेंगे, ये आपका फैमिली फंक्शन है जहाँ सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी है, जेनी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। हाँ मैं तो एक रोबोट हूँ, बस एक बटन दबाने की जरूरत है और चुटकियों में काम पूरा हो जाएगा, आर्या ने हल्के गुस्से में जवाब दिया। बटन दबाने का तो पता नहीं लेकिन मिस्टर ओबेरॉय चाहते हैं कि ड्रेस आप ही डिजाइन करें, आप डिजाइन बना दीजिए, बाकी का काम टीम संभाल लेगी, आप कहें तो मैं प्रोफेशनल्स को हेल्प के लिए भेज दूं, आप उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे दीजिएगा, जेनी ने सुझाव दिया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो और हाँ याद से अगले 2 घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, आर्या ने जवाब दिया। उसके ऐसा कहते ही जेनी तुरंत बाहर चली गई। उसके जाते ही आर्या ने वहीं बैठे बैठे अपने केबिन के डोर को लॉक किया। आर्या चेयर पर बैठकर अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था। टेबल पर सामने उसकी माँ बंधन की तस्वीर का फोटो फ्रेम रखा था।
आर्या ने उस तस्वीर की तरफ देखकर कहा, आप यकीन नहीं करेंगी माँ, एक बार फिर वो आपके प्यार को छलनी करने के लिए तैयार है। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, उन्होंने आपकी यादों की बलि चढ़ा दी है। आपके जाने के बाद एक दिन भी उन्होंने आपको याद नहीं किया। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए उसकी पलकें भीग गईं। उसकी आंखों से आंसू निकलते उससे पहले उसने उन्हें पोंछ लिया। खुद को सामान्य करने के लिए आर्या ने पास पड़ा पानी पिया। जिसको जो करना है करने को, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब करके वो मुझे तोड़ना चाहते हैं। तभी जानबूझकर कैरन की ड्रेस डिजाइन करने का काम मुझे दिया। वो कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे उनकी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्या ने मन ही मन खुद को मजबूत किया और वहां पड़े पेपर को उठाकर ड्रेस की स्केच बनाने लगा। उसका सारा ध्यान ड्रेस को डिजाइन करने में लगा था। लगभग एक घंटे बाद आर्या ने एक खूबसूरत इवनिंग गाउन की डिजाइन बना दी थी। डिजाइन तैयार होने के बाद उसने जेनी को अपने केबिन में बुलाकर उसे देते हुए कहा, जिसने भी इस ड्रेस को डिजाइन करने के लिए कहा है उसे मेजरमेंट और बाकी जरूरी चेंजेस के बारे में डिस्कस कर लेना, शाम से पहले ये ड्रेस तैयार हो जाना चाहिए। जेनी ने उसकी बात पर हामी भरी। उसने एक नजर ड्रेस की तरफ देखा जो काफी खूबसूरत थी। ये वाकई काफी ब्यूटीफुल है और काफी महंगा भी। पीस एक्सक्लूसिव है और इमरजेंसी में तैयार किया गया है, तो जिसने भी इसे ऑर्डर करवाया है उसे एक्स्ट्रा अमाउंट ली जाए। ऑर्डर रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आर्या काफी सख्ती से जवाब दे रहा था। उसकी बात सुनकर जेनी को हैरानी हुई। उसने कहा, लेकिन सर ये ड्रेस तो, ये तो आपके डैड ने डिजाइन करवाई थी, फिर हम उनसे पैसे कैसे? वो सिवाय मेरे कस्टमर के और कुछ नहीं है। अब इसे यहाँ से ले जाओ और मुझे बाकी का काम करने दो।
जेनी ने उसकी बात पर हामी भरी और वो ड्रेस लेकर वहां से चली गई। उसकी जाने के बाद आर्या को इंडियाना रेस्टोरेंट में होने वाली पार्टी की याद आई। एक बार वहां की भी अपडेट ले लेता हूँ। पार्टी की तैयारियां तो अच्छे से हो जाएगी, लेकिन शिवी की अपडेट लेना भी जरूरी है। आई होप पिया ने उसे इनवाइट कर दिया होगा, सोचते हुए आर्या ने इंडियाना रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की पिया को कॉल मिलाया। वहीं पिया ने आर्या के नंबर से कॉल आता देखा तो वो अपना सारा काम छोड़कर एक टेबल पर जाकर बैठ गई। वो कॉल पिक करके जल्दी से बोली, कल शाम की पूरी तैयारियां हो गई हैं, आप कब तक पहुंच रहे हैं? पिया की आवाज़ में उसका एक्साइटमेंट झलक रहा था। तुमने शिवी को इनवाइट किया? आर्या ने सीधे सीधे पूछा। हाँ सर, उन्हें इन्विटेशन मिल गया है, उनके दोस्तों को भी बुलाया है, उनमें से एक तो आप ही गई है, बोलते हुए पिया ने जिया की तरफ देखा। ये आ गई है तो वो भी जरूर आएगी, मैंने अभी तक उन्हें बताया नहीं कि आपने रेस्टोरेंट खरीद लिया है, शाम को जब उन्हें पता चलेगा तो। पिया अपने एक्साइटमेंट में लगातार बोली जा रही थी, तभी उसे सामने से कॉल कट होने की आवाज़ आई। कट कर दिया? कम से कम पूरी बात तो सुन लेते। आर्या की कॉल कट करने से पिया की एक्साइटमेंट पल में गायब हो गई। उधर शिवी के आने की बात सुनकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो शिवी का हारता हुआ चेहरा देखना चाहता था। शाम का इंतजार करते हुए वो अपने कामों में लग गया। शाम के 6 बज रहे थे। ओबेरॉय मेंशन में होने वाली पार्टी की तैयारी काफी अच्छी तरीके से पूरी हो चुकी थी। इतने कम वक्त में भी मिस्टर ओबेरॉय ने अच्छी खासी तैयारी करवा ली थी। उन्होंने इस अनाउंसमेंट के लिए मीडिया पर्सन्स को भी इनवाइट किया था। लंदन में रहने वाले उनके बहुत से रिश्तेदार भी इस पार्टी में शिरकत करने आ रहे थे। इन सबके बीच आर्या की डिजाइन की हुई ड्रेस ओबेरॉय मेंशन पहुंची। ड्रेस के आते ही मायरा दौड़कर गई। उसने हाउस हेल्पिंग स्टाफ से कहा, इसे मुझे दे दो, कैरन ने मुझे इसे लाने के लिए कहा था। उसने भी ज्यादा बहस नहीं की और मायरा को वो ड्रेस थमा दी। मायरा सबकी नजरों से छुपते छुपाते वो ड्रेस लेकर शौर्य के कमरे में पहुंची। तो आखिर तुमने अपना काम कर दिखाया? शौर्य ने मुस्कुराकर कहा। ऑफ कोर्स कर दिया, मायरा ने जवाब दिया। उसने कमरा बंद किया और ड्रेस निकालकर देखने लगी। उसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या हम कोई और ड्रेस यूज नहीं कर सकते? ये बहुत खूबसूरत है, मैं इसे पहनना चाहती हूँ, मायरा ने जल्दी से कहा। तुम लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता, फॉर श्योर ये ड्रेस खूबसूरत होनी ही थी क्योंकि आर्या ने इसे डिजाइन किया है, बोलते हुए शौर्य ने मायरा के हाथ से वो ड्रेस छीन ली। बड़े ओबेरॉय ने इस पर काम कर दिया है, अब छोटे ओबेरॉय की बारी। शौर्य ने ड्रॉर से कैंची निकाल ली और गाउन के पीछे लगी जिप के धागे ढीले करने लगा। उसे ऐसा करता देख मायरा ने कहा, काफी स्मार्ट हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारी तरह नहीं होना, उसने अपने चश्मे को ऊपर चढ़ाते हुए जवाब दिया। अगर पूरी ड्रेस को काटता तो साफ पता चल जाता कि किसी ने जानबूझकर किया है। अब इस ड्रेस को जो भी देखेगा वो यही सोचेगा कि बनाने वाले ने जानबूझकर इसे लूज किया होगा या काम लापरवाही में हुआ है। देखना, आज कैरन जब इस ड्रेस को पहनेगी तो थोड़ी ही देर बाद ये ड्रेस पीछे से फट जाएगी। ये सही तो होगा ना? कहीं हम दोनों पर तो कोई ब्लेम नहीं आएगा ना? मायरा को थोड़ी घबराहट हो रही थी। डरो मत, इसका पूरा ब्लेम बिग ब्रो पर आएगा, वो कहते हैं ना मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब देखना उन्हें कितना और क्या फर्क पड़ता है। जाओ और अब इसे कैरन के पास भिजवा दो। अपना काम करने के बाद शौर्य ने चालाकी से उसी तरह से ड्रेस को वापस पैक करके मायरा को थमा दिया। मायरा ने उसकी बात पर हामी भरी और वो ड्रेस लेकर कैरन के पास चली गई। हेलो रीडर्स, लेट्स सी अ पार्टी में क्या हंगामा होने वाला है। कहानी को पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा और साथ ही आगे आने वाले भागों की अपडेट के लिए फॉलो करें।